हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। तब रोहन जल्दी से बोला, अरे दीदी, मैं तो कब से स्कूल जाना चाहता हूँ। आप जानती हैं ना, मुझे स्कूल जाना कितना ज़्यादा पसंद है। और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगा, ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं ज़रूर जाऊँगा, और फिर जब मुझे मम्मा और दीदी की याद आया करेंगी, मैं फ़ोन कर लिया करूँगा। और दीदी तो मुझसे मिलने आया ही करेगी ना। अब जैसे ही मासूमियत से रोहन ने ये कहा, झलक मुस्कुरा दी थी। और तब उसकी माँ ने झलक और अपने बेटे रोहन को गले से लगा लिया था। वेल, अब जल्दी ही अपनी माँ के कहने पर झलक ने अपने भाई को अब अपनी मासी के पास भेजने का फैसला किया, जो कि एक हॉस्टल चलाया करती थी, हॉस्टल की वार्डन थी। फिर जल्द से जल्द रोहन को वहाँ भेज दिया था। वहाँ पर रोहन की पढ़ाई के साथ साथ उसका रहना, सब कुछ इंतज़ाम वही हो गया था। और झलक भी अब थोड़ा अपने भाई की तरफ से बेफिक्र हो गई थी, क्योंकि उसको वहाँ पर उसके भाई रोहन का ख्याल रखने के लिए उसकी मासी थी, और अब यहाँ वो आसानी से अपने माँ बाप दोनों पर ध्यान दे सकती थी। वेल, झलक की ज़िंदगी एक बार फिर से नॉर्मल हो गई थी। कुछ दिनों तक एक बार फिर से वो नाइट शेड क्लब में काम करने लगी थी, और एक बार फिर से अपने बीमार पिता के लिए अस्पताल जाती है, डेली उन्हें देखती थी। इतना ही नहीं, अपनी माँ को अस्पताल छोड़ आया करती। उर्वशी जी ने उस पर बड़ी मेहरबानी की थी। उसने उसके पिता के लिए एक प्राइवेट कमरा तैयार करवा दिया था, जिसमें उसकी माँ आराम से वहाँ रह सकती थी। और झलक टेंशन फ्री होकर अपनी नौकरी करने लगी थी। वो इसी तरह से उसकी ज़िंदगी के 8 से 10 दिन बड़े ही नॉर्मल तरीके से गुजरे थे। धीरे धीरे वो सिद्धार्थ खुराना को भी भूलने लगी थी, क्योंकि इस बीच ना तो सिद्धार्थ खुराना उसके सामने आया था और ना ही उसका कोई आदमी उसके आसपास आया था। हालांकि झलक को इस बात के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि 24 घंटे सिद्धार्थ खुराना की उस पर नज़र थी। वेल, एक दिन जब नाइट शेड क्लब की ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद झलक वापस से अपने घर जा रही थी, तभी उसे उस प्राइवेट डिटेक्टिव का फ़ोन आया था, और उसने फ़ोन उठाकर सीधे सीधे झलक को ये बोला कि उसे वो कार हिट केस का आरोपी मिल गया है। अब जैसे ही झलक ने ये सुना, वो पूरी तरह से चौंक गई थी। और तब उसे डिटेक्टिव ने बताया कि जिस गाड़ी से उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था, उसको पूरी तरह से कबाड़ खाना बना दिया गया था, और एक आदमी को उस पर पूरी तरह से शक है। अब तो झलक को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि ज़रूर मिस्टर ओबेरॉय ने इस केस को संभालने के लिए पुलिस वालों को अच्छी खासी रिश्वत दी थी। वेल, जल्दी डिटेक्टिव ने झलक को उस ड्राइवर के बारे में बता दिया था, जिस ड्राइवर ने झलक के पिता का एक्सीडेंट करवाया था। तब झलक ने उसका ढेर सारा शुक्रिया अदा किया था, उसके बाकी के पैसे भी उसे दे दिए थे। उसके बाद फ़ोन रखते हुए झलक खुश होते हुए बोली, बहुत जल्द मिस्टर ओबेरॉय में तुम्हारा सच पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगी, और तुमने जो मेरे पिता के साथ गलत करने की कोशिश की है, उसकी सज़ा दिलवाऊंगी। हालांकि ईशान ओबेरॉय झलक का असली पिता था, लेकिन झलक अब पूरी तरह से उनसे नफरत करने लगी थी, और वैसे भी उसने उसके पालने वाले पिता को मारने की कोशिश की थी, तो भला झलक इस तरह से इस बात को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी। वहीं दूसरी ओर ओबेरॉय विला में मिसेज नैना ओबेरॉय को एक फ़ोन आया। अब जैसे ही फ़ोन आया, उसने उसकी नज़रें सोफे पर बैठे हुए अपने पति ईशान ओबेरॉय और साथ ही साथ अपनी बेटी आकांक्षा ओबेरॉय पर चली गई थी, और वो उनकी ओर देखकर बोली, झलक ने हमारे पीछे प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन लगाया था, और उसने ये शक हो गया है कि उस दिन उसके पिता को टक्कर हम लोगों ने करवाई थी, और साथ साथ उसने वो ड्राइवर को खोज निकाला है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ड्राइवर हमारे बारे में उसे सब कुछ बता दे। आपको क्या लगता है, क्या उसे हम पर शक हो जाएगा? अब तो जैसे ही मिस्टर ओबेरॉय ने ये सुना, उनकी आंखें हैरानी के मारे फैल गई थी। और इतना ही नहीं, आकांक्षा के चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तब मिस्टर ओबेरॉय अपना ठीक करते हुए बोले, लेकिन उसे लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने इस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन हायर कर लिया? और जब मैंने तुम्हें कहा था कि उसे पर जब तक वो इस शहर से नहीं चली जाती, तब तक उस पर 24 घंटे नज़र रखो, तो तुमने उस पर नज़र क्यों नहीं रखी? इतना समय क्यों लग गया इस बात के बारे में पता लगने में कि उसने प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ये बात बाहर आ गई कि हम लोगों ने उसके पिता पर हमला करवाया था, तो समाज में जो हमारी इज्जत रिस्पेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, हम जो सपना देख रहे हैं अपनी बेटी आकांक्षा की खुराना परिवार में शादी करने का, वो सपना भी हमारा से टूट जाएगा और फिर हर कोई हमें नीचे नजरों से देखेगा। तब मिसेज नैना ओबेरॉय हड़बड़ा कर बोली, मुझे भी इसी बात का डर है। तो मिस्टर ओबेरॉय रोबदार आवाज में ने कहा, लेकिन अगर उस ड्राइवर के बारे में झलक को पता चल गया है तो अब हमारा इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे ड्राइवर को मारना होगा। आकांक्षा झिझकते हुए बोली, लेकिन पापा अगर झलक को पहले से इस बारे में पता हो तब क्या होगा? तब उसकी माँ नैना ओबेरॉय अकड़ते हुए बोली, तो उसे भी मरना होगा, लेकिन हमारा काम पूरा होने के बाद, और जब तक वो नहीं मरेगी तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। बड़े ही बुरी तरह से नैना ने झलक का नाम लिया था। उनके बातों में झलक के लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वहीं आकांक्षा मन में खुशी से सोचने लगी कि अच्छा ही है कि झलक मर जाए और मेरे माँ पापा ही उसे मरवा दें। उसके बाद कम से कम कभी भी मेरे दिल में ये डर तो नहीं रहेगा कि सिद्धार्थ खुराना को ये सच बताना चल जाएगा कि झलक ने ही उस रात उसे बचाया था। अब तीनों ही कुछ न कुछ प्लान बनाने लगे थे और फटाफट से उस ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन निकालवाने लगे थे। क्या आखिरकार वो ड्राइवर कहाँ है? वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर कुछ घंटों के बाद झलक जब हॉस्पिटल में अपनी माँ को खाना देकर वापस अपनी स्कूटी से घर पर थोड़ी देर आराम करने के लिए जा रही थी, ठीक उसी वक्त उसको उस डिटेक्टिव का SMS आया था जिसमें लिखा था, झलक वापस डिटेक्टिव को फोन ना करे। ये SMS देखकर झलक हैरान हो गई थी कि अचानक से ये डिटेक्टिव उसे इस तरह का SMS क्यों कर रहा है। तब झलक ने जल्दी ही स्कूटी धीमी करके डिटेक्टिव को फोन मिलाकर कहा, तुमने तो कहा था कि उसे ड्राइवर का एड्रेस देने के बाद आप मुझे किसी तरह का कोई कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, और आप मुझे किसी भी तरह से कोई कॉन्टैक्ट ना करने का SMS क्यों कर रहे हैं? आखिर क्यों? तब झलक ने देखा कि दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक लड़की थी। उसका नाम सोफिया था। वो बोली, हेलो मिस झलक शर्मा, मेरा नाम सोफिया है और मैं आपके प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की सेक्रेटरी हूँ। मेरे बॉस चाहते हैं कि मैं आपको ये बता दूँ कि वो अब आपके साथ किसी तरह का कोई सौदा या किसी तरह की कोई डील नहीं कर रहे हैं, और ना ही वो आपको ड्राइवर का पता देंगे। अब जैसे ही झलक ने ये सुना वो पूरी तरह से चौंक गई थी। वो तो ड्राइवर की स्टेटमेंट के थ्रू अपने पिता को न्याय दिलाना चाहती थी और मिस्टर ओबेरॉय का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाहती थी। तब झलक थोड़ा सा सोफिया पर भड़कते हुए बोली, आप क्या कह रही हैं? मैंने उन्हें पूरे 70 से 80 हजार रुपए दिए हैं, वो इस तरह से पीछे कैसे हट सकते हैं? उस वक्त झलक काफी ज्यादा गुस्से में थी। तभी सोफिया ने थोड़ा सा मायूस होकर आंखों में नमी लाकर कहा, देखे मैडम, आपके मामले की ही जांच कर रहे थे मेरे बॉस, लेकिन शायद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन्होंने आपके कहने पर उस ड्राइवर को पकड़ लिया था और वादे के मुताबिक आपको ड्राइवर को देने वाले थे,
लेकिन जब वो उसे लेकर इस शहर में आ रहे थे ठीक उसी वक्त उन पर एक जानलेवा हमला हुआ और अभी उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उस ड्राइवर को कुछ लोग अपने साथ उठा ले गए।